सुजीत कुमार की आवाज में सिकंदर का भारतीय अभियान शीर्षक रिकॉर्डिंग होने जा रही है। हखामनी आक्रमण के पश्चात पश्चिमोत्तर भारत एक दूसरे यूरोपीय आक्रमण का शिकार हुआ। यह महान यूरोपीय विजेता सिकंदर के नेतृत्व में होने वाला मैसिडोन आक्रमण था, जो पहले की अपेक्षा कहीं अधिक भयावह सिद्ध हुआ। सिकंदर मैसिडोन के क्षत्रप फिलिप द्वितीय, जो कि 359 से 336 ईसा पूर्व का पुत्र था, पिता की मृत्यु के पश्चात 20 वर्ष की अल्पायु में वह राजा बना। वह एक महत्वाकांक्षी शासक था। बचपन से ही उसकी इच्छा विश्व सम्राट बनने की थी। कहा जाता है कि विश्व विजय करने की प्रेरणा उसे अपने पिता से ही प्राप्त हुई थी। उसमें अदम्य उत्साह, साहस तथा वीरता विद्यमान थी। मैसिडोन तथा यूनान में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर लेने के बाद उसने दिग्विजय की एक व्यापक योजना तैयार की। इस प्रक्रिया में उसने एशिया माइनर, सीरिया, मिस्र, बेबीलोन, बैक्ट्रिया, सोग्डियाना आदि को जीता। 331 ईसा पूर्व में अरबेला के प्रसिद्ध युद्ध में दारा तृतीय के नेतृत्व में उसने विशाल पारसिक वाहिनी को परास्त किया। इस आश्चर्यजनक सफलता से संपूर्ण हखामनी साम्राज्य उसके चरणों में लौटने लगा। पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियां इस समय अराजकता के दौर से गुजर रही थीं। यह प्रवेश सिकंदर की विजयों के लिए सर्वथा उपयुक्त था। अतः हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ वह भारतीय विजय के लिए चल पड़ा। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में इस अनेक छोटे बड़े जनपद राजतंत्र एवं गणतंत्र विद्यमान थे। पारस्परिक द्वेष एवं घृणा के कारण वे किसी भी आक्रमणकारी का संगठित रूप से सामना नहीं कर सकते थे। राजतंत्र गणतंत्रों को समाप्त करना चाहते थे, जबकि गणतंत्रों के लिए राजतंत्रों की सत्ता असह्य हो रही थी। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है, जो इस समय पंजाब तथा सिंध के प्रदेशों में विद्यमान थे। इनके नाम इस प्रकार हैं। पहला, आस्पेशियन। यह गणतंत्रात्मक राज्य था, जो काबुल नदी के उत्तर के पहाड़ी भागों में फैला हुआ था। दूसरा, गुरुएंस प्रदेश। यह गणराज्य ऑस्पेशियन तथा अशोकों के राज्य के बीच स्थित था। तीसरा, अस्केनोस राज्य। इससे अशोकों के राज्य से तात्पर्य है। यह गणराज्य स्वात नदी के तट पर स्थित था तथा मेगासा यहाँ की राजधानी थी। चौथा, नीसा। यह गणराज्य काबुल तथा सिंध नदियों के बीच स्थित था। पांचवां, प्यूकेलाओटिस। यह संस्कृत के पुष्कलावती का रूपांतर है। यहाँ राजतंत्र था और यह पश्चिमी गांधार राज्य का पूर्वी भाग था। यह आजकल पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में बसा हुआ है। सातवां, अर्सेक्स राज्य। पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित यह राजतंत्र तक्षशिला का ही एक भाग था। इसे संस्कृत में उर्षा कहा जाता है। आठवां, अभिसार। स्ट्रैबो ने तक्षशिला के उत्तर की ओर पहाड़ों के मध्यवर्ती प्रदेश को अभिसार कहा है। संभवतः यह प्राचीन कंबोज राज्य की ही एक भाग था। यहाँ राजतंत्र था। नौवां, पुरु राज्य। यह राजतंत्र झेलम तथा चीनाम नदियों के बीच में स्थित था। इसमें प्राचीन कैके प्रदेश भी सम्मिलित था। दसवां, ग्लोग निकाय प्रदेश। यह एक गणराज्य था, जो चिनाब नदी के पश्चिम में बसा हुआ था। ग्यारहवां, गांधारिस। यह राजतंत्र था, जो चिनाब और राबी नदियों के बीच स्थित था। यह गांधार महाजनपद का ही पूर्वी भाग था। यहाँ पुरु का भतीजा राज्य करता था। बारहवां, अद्रेस्ताई। यह गणराज्य रावी के पूर्व की ओर स्थित था। इसकी राजधानी पिम्प्रमा थी। तेरहवां, कथाई अथवा कैथियंस। स्ट्रैबो ने इस राज्य को झेलम और चिनाब के बीच स्थित बताया है। यहाँ गणराज्य था। चौथा, सोफाइटस राज्य। यह भी झेलम का तटवर्ती राज्य था। पंद्रहवां, फेगोला। यह राजतंत्र राबी तथा व्यास नदियों के बीच में स्थित था। सोलहवां, सिबोई। यह गणराज्य था। सिबोई लोग झाग जिले के शोरकोट क्षेत्र के निवासी थे। उनका राज्य झेलम तथा चिनाब नदियों के संगम के नीचे बसा हुआ था। सत्रहवां, अगलसोई। यह भी गणराज्य था। ये लोग सिबोई के ही पड़ोसी थे। अठारहवां, सुद्रक। व्यास नदी के तट पर बसा हुआ यह भी एक गणराज्य था। 19वां मलोई मालब रावन रावी नदी के तट दोनों तटों पर मालवों का गणराज्य स्थित था। मालवों तथा क्षुद्रकों ने संगठित रूप से सिकंदर का प्रतिरोध किया था। 20वां अवस्ट्रनोई इस गणराज्य के लोग चिनाब तथा सिंधु नदियों के संगम के ऊपर निवास करते थे। 21 एवं 22वां जाथ्रोई और ओसे डीओई ये दोनों ही गणराज्य थे। एरियन ने इनका साथ साथ उल्लेख किया है। ये दोनों राज्य चिनाब व रावी तथा सिंधु और चिनाब नदियों के बीच के भाग में फैले हुए थे। 23वां एवं 24वां सुद्राई और मसनोई ये दोनों ही गण जातियाँ थीं। उनका राज्य उत्तरी सिंधु वहावलपुर तथा सिंधु की सहायक नदियों के संगम के नीचे स्थित था। 25वां मेसिकनोस राज्य यह राजतंत्र था जिसमें वर्तमान सिंधु का अधिकांश प्रदेश शामिल था। 26वां ओकिकनोस राज्य यह भी राजतंत्र था। कर्निंगहम के अनुसार यह लरखान के आसपास स्थित था। 27वां सम्बोस राज्य यह मोसिकनोस का पड़ोसी राज्य तंत्र था। दोनों एक दूसरे के शत्रु थे। 28वां पटलेन पाटल यह राजतंत्र सिंधु नदी के डेल्टा में बसा हुआ था। पाटल इसकी राजधानी थी। यूनानी लेखों के अनुसार यहाँ स्पार्टा के समान ही द्वैराज्य प्रथा थी। सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखों ने इन राज्यों के बीच पारस्परिक शत्रुता का उल्लेख किया है। कॉटियस हमें बताता है कि तक्षशिला के राजा आम्भी तथा कैकेयन नरेश पोरस में शत्रुता थी। एरियन के अनुसार पोरस और अबिसेयर्स ने मिलकर मालव तथा शुद्रकों पर आक्रमण किया था। पोरस तथा उसके भतीजे के संबंध खराब थे। सम्बोस और मोसिकनोस एक दूसरे के शत्रु थे। इस आपसी घृणा एवं संघर्ष के वातावरण ने सिकंदर का कार्य सरल बना दिया। सिकंदर का सिंधु को प्रस्थान हखामनी साम्राज्य का विनाश करने के पश्चात सिकंदर ने उसके सबसे पूर्वी भाग में स्थित बल्ख के प्रांत में एक उपनिवेश की स्थापना की। इसी स्थान से उसने भारतीय विजय के लिए कूच किया। बल्ख से चलकर काबुल के मुख्य मार्ग से होते हुए उसने हिंदू कुश पर्वत पार किया। वह अलेक्जेंड्रिया पहुंचा जहां के क्षत्रप को उसने कुशासन के आरोप में पदच्युत कर उसके स्थान पर एक नए क्षत्रप की नियुक्ति की। यहां से सिकंदर ने निकोया को प्रस्थान किया। यह भारत का सबसे निकटवर्ती प्रदेश था। निकाया में सिकंदर में तक्षशिला के राजा आम्भी के नेतृत्व में एक दूतमंडल मिला जिसने उसे सहायता का पूर्ण आश्वासन दिया। तक्षशिला के राजा ने सिकंदर को बहुमूल्य वस्तुएं तथा हाथी भेंट किए। किसी भारतीय नरेश द्वारा अपने देश के प्रति विश्वासघात किए जाने का लिखित इतिहास में यह पहला दृष्टांत है। हिंदू कुश के उत्तर में शशिगुप्त नामक एक अन्य भारतीय नरेश ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार की तथा उसकी सहायता का वचन दिया। इस भारतीय दृश्य द्रोहियों द्वारा आश्वस्त हो जाने के पश्चात सिकंदर ने आगे प्रस्थान किया। उसने अपने सेना को दो भागों में विभक्त किया। एक भाग को उसने हेफेस्टियन और पेरडियस नामक अपने दो सेनापतियों के नेतृत्व में काबुल नदी के किनारे किनारे खैबर दर्रे से होते हुए सिंधु नदी तक पहुंचाने का आदेश दिया। दूसरे भाग का नेतृत्व स्वयं ग्रहण कर उसने कुनार तथा स्वात नदी घाटी के पर्वतीय दुर्गम क्षेत्रों भीषण में युद्ध किया। प्रथम सैन्य दल को मार्ग में पुष्कलावती पश्चिम गंधार के शासक अष्टक के भीषण अवरोध का सामना करना पड़ा। 30 दिनों तक युद्ध करने के बाद यह भारतीय राजा अपनी स्वाधीनता की रक्षा के लिए लड़ता हुआ मारा गया। उसका राज संजय को सौंप कर यह सैन्य दल सिंधु नदी पर पहुंच गया। सिकंदर जिसे सेना का नेतृत्व कर रहा था उसे कपिशत तथा तक्षशिला के बीच में बसी हुई अनेक स्वाधीनता प्रिय तथा लड़ाकू जनजातियों से युद्ध करना पड़ा। एरियन ने इस पर्वतीय क्षेत्र की जातियों को अस्पेशियन गौरियन तथा अस्केनिया कहा है। सर्वप्रथम कुनार घाटी के अस्पेशियाना से उनका युद्ध हुआ। ये कड़े प्रतिरोध के बाद हरा दिए गए। इसके पश्चात वह निशा की ओर बढ़ा। निशा जाति ने बिना युद्ध के ही सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली तथा अपने को यूनानियों का वंशज बताया। तत्पश्चात गौरियानों के प्रदेश को जीतते हुए सिकंदर ने अश्वकों के राज्य में प्रवेश किया जिनकी राजधानी मशक में थी। भीषण प्रतिरोध के पश्चात हुए परस्त हुए यूनानी लेखकों के विवरण से पता चलता है कि इस राज्य की स्त्रियों ने पुरुषों की मृत्यु के बाद युद्ध किया था। सिकंदर ने इस नगर की सभी स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया। मशक के बाद वजीरा तथा ओरा को जीता हुआ सिकंदर पुष्कलावती आया, जहां उसकी दूसरी सेना ने पहले से ही अधिकार कर रखा था। सिंधु नदी के पश्चिमी प्रदेशों को उसने एक प्रांत में संगठित किया तथा निकोनोर को वहां का क्षत्रप नियुक्त किया। फिलिप के नेतृत्व में एक सैनिक जत्था पुष्कलावती में रख दिया। पुष्कलावती तथा सिंधु के बीच स्थित सभी छोटे छोटे प्रदेशों को जीतकर उसने निचली काबुल घाटी में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। सिंधु पार करने के पूर्व कुछ स्थानीय सहायकों की मदद से सिकंदर ने ओरनोस के सुदृढ़ गढ़ पर कब्जा कर लिया। यहाँ उसने शशिगुप्त को शासक नियुक्त किया। इस स्थान से सिकंदर वर्तमान ओहिंद के समीप सिंधु नदी के तट पर आया, जहाँ उसके सेनापतियों ने पहले से ही नावों का पुल बना रखा था। यहाँ एक महीने विश्राम करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व के वसंत में यूनानी विजेता ने सिंधु नदी पर पार कर भारत भूमि पर कदम रखे। सिंधु नदी के पार सिकंदर की गतिविधियाँ। सिंधु नदी पार करने के बाद तक्षशिला के शासक आम्भी, जिसका राज्य सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच फैला था, ने अपनी पूरी प्रजा तथा सेना के साथ सिकंदर के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया तथा अपनी राजधानी में सिकंदर का भव्य स्वागत किया। तक्षशिला में एक दरबार लगा, जहां पास पड़ोस के अनेक छोटे छोटे राजाओं ने सिकंदर के सामने बहुमूल्य सामग्रियों के साथ आत्मसमर्पण किया। इस प्रकार तक्षशिला में खुशियां मनाते हुए सिकंदर ने झेलम तथा चिनाब के मध्यवर्ती प्रदेश के शासक पोरस से आत्मसमर्पण की मांग की। पोरस जैसे स्वाभिमानी राजा के लिए यह शर्त अपने गौरव तथा मर्यादा के विरुद्ध लगी। उसने यह कहला भेजा कि वह यूनानी विजेता के दर्शन रण क्षेत्र में ही करेगा। यह सिकंदर को खुली चुनौती थी, अतः वह युद्ध के लिए तैयार हुआ। झेलम वितस्ता का युद्ध। पोरस तथा सिकंदर की सेनाएं झेलम नदी के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर अड्डी। बरसात के कारण झेलम नदी में बाढ़ आ गई थी, अतः सिकंदर के लिए नदी पार करना कठिन था। दोनों पक्ष कुछ दिन तक अवसर की प्रतीक्षा करते रहे। अंत में एक रात जब भीषण वर्षा हुई, सिकंदर ने धोखे से अपनी सेना को झेलम नदी के पार उतार दिया। उसके इस कार्य से भारतीय पक्ष स्तंभित रह गया। पोरस की सेना बड़ी विशाल थी। एरियन के अनुसार इस सेना में 4,000 बलिष्ठ अश्वारोही, 300 रथ, 200 हाथी तथा 30,000 पैदल सिपाही थे। सर्वप्रथम पोरस ने अपने पुत्र के नेतृत्व में 2,000 सैनिकों को सिकंदर का सामना करने तथा उसका मार्ग अवरुद्ध करने के लिए भेजा, परंतु यूनानी सैनिकों ने सामने हुए नहीं टिक सके तथा उसका पुत्र मारा गया। जब पोरस सिकंदर के साथ अंतिम मुठभेड़ के लिए अपनी पूरी सेना के साथ मैदान में आ डटा, यह भारतीयों का दुर्भाग्य था कि प्रारंभ से ही युद्ध उनके विरुद्ध रहा। पोरस के सैनिक विशाल धनुषों से युक्त थे। बरसात के कारण भूमि दलदल हो जाने से उसके लिए धनुष को जमीन में टेक सकना असंभव सा हो गया। पोरस की सेना के विशालकाय हाथी यूनानी सेना के तीव्रगामी घोड़ों के सामने नहीं टिक सके। युद्ध का परिणाम सिकंदर के पक्ष में रहा। बहुत शीघ्र पोरस की विशाल सेना तितर बितर हो गई। उनके सैनिक भाग निकले तथा अनेक मौत के घाट उतार दिए गए, परंतु 6.5 फुट का लंबा जवान पोरस विशालकाय हाथी पर सवार हो अंत तक लड़ता रहा। जब विजय की समस्त आशाएं क्षीण हो गई तो उसने युद्ध भूमि से अपने हाथी मोड़ दिए। इसे प्रत्यावर्तित होते हुए देखकर सिकंदर ने तक्षशिला के राजा आम्भी को आत्मसमर्पण के संदेश के साथ पोरस के पास भेजा। देशद्रोही आम्भी को देखते ही घायल पोरस की भुजाएं एक बार पुनः फड़क उठी तथा उसका वध करने के निमित्त उसने अपनी शेष शक्ति से उसके ऊपर भाले का अंतिम प्रहार किया। सौभाग्यवश आम्भी बच गया। इस प्रकार का दृश्य एक प्रसिद्ध सिक्के पर अंकित है, जिसके मुख भाग पर भागते हुए हाथी के पीछे घुड़सवार का चित्र तथा बड़छा फेंककर वार करते हुए हाथी पर सवार का चित्र अंकित मिलता है तथा पृष्ठभाग पर जीएस देवता की वेशभूषा से वज्र धारण किए हुए सिकंदर का चित्र अंकित है। आम्भी के वापस लौटने से के बाद सिकंदर ने दूसरा दूत मंडल पोरस को मनाने के लिए भेजा। इसमें पोरस का मित्र मेरुस भी था। उसके प्रयास से पोरस आत्मसमर्पण के लिए राजी हो गया तथा उसने अपने को यूनानी सेना के हवाले कर दिया। वह यूनानी सेना द्वारा बंदी बना लिया गया तथा घायलावस्था में सिकंदर के सामने लाया गया। उसके शरीर पर 9 घाव थे। सिकंदर ने पोरस की वीरता की प्रशंसा की तथा पूछा, तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए? पुरस ने बड़ी निर्भीकता एवं गर्व के साथ उत्तर दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इस उत्तर को सुनकर सिकंदर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने पुरस को न केवल उसका राज्य ही लौटाया, अपितु उसके राज्य को उससे भी अधिक विस्तार कर दिया। प्लूटार्क के अनुसार इसमें 15 संघ राज्य, उनके 5,000 बड़े नगर तथा अनेक ग्राम थे। इस प्रकार पोरस की पराजय भी जय में परिणित हो गई। इसके पश्चात सिकंदर ने युद्ध में वीर गति पाने वाले सैनिकों का अंत्येष्टि संस्कार किया तथा यूनानी देवताओं की पूजा की। उसने दो नगरों की स्थापना की। पहला नगर रण क्षेत्र में ही विजय के उपलक्ष्य में बसाया गया और दूसरा नगर निकाया रखा गया। दूसरा नगर झेलम नदी के दूसरे तट पर उस स्थान पर बसाया गया जहाँ सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहुफेकेफला मरा था। घोड़े के नाम पर इस नगर का नाम भी बहुफेकला रखा गया। झेलम के बाद के युद्ध। झेलम के युद्ध में पुरस को परास्त करने के पश्चात सिकंदर ने चिनाव नदी के पश्चिमी तट पर स्थित ग्लौचुकायन राज्य पर आक्रमण किया। इस राज्य को जीतकर पुरस के राज्य में मिला दिया गया। इसी बीच अशोकों के प्रदेश में विद्रोह उठ खड़ा हुआ तथा यूनानी क्षत्रप निकानोर मौत के घाट उतार दिया गया। सिकंदर ने अलेक्जेंड्रिया तथा तक्षशिला के क्षत्रपों टायरेसपेस तथा फिलिप को विद्रोह को दबाने का आदेश दिया। उनकी मदद के लिए ईरान से थ्रेसियन सेनाएं भी आ पहुंची। विद्रोहियों को दबा दिया गया। इसके पश्चात सिकंदर ने चिनाव नदी पार कर गंदारिश राज्य में प्रवेश किया। यहाँ पुरस का भतीजा छोटा पुरु शासन करता था। वह अपना राज्य छोड़कर भाग गया तथा सिकंदर ने चिनाब और रावी नदियों के बीच के उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। वह संपूर्ण क्षेत्र पोरस के राज्य में मिला दिया गया। उसके बाद सिकंदर ने रावी नदी पार किया तथा गण जातियों पर आक्रमण कर दिया। अदृष्टाई लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया तथा सिकंदर ने उसकी राजधानी पिम्प्रमा पर अधिकार कर लिया। इसके आगे कथाई गणराज्य था। कठ गणजाति के लोग पंजाब के सबसे अधिक लड़ाकू योद्धाओं में थे। एरियन उनके साहस की प्रशंसा करता है। उनकी राजधानी संगल में थी। उन्होंने सिकंदर का कड़ा प्रतिरोध किया तथा अपनी राजधानी के चारों ओर रथों का घेरा बना लिया। अंततः पोरस की मदद से सिकंदर ने उन्हें परास्त किया, उनका नगर ध्वस्त कर दिया तथा कठों की सामूहिक हत्या कर दी गई। यूनानी विवरण के अनुसार 70,000 व्यक्ति मारे गए तथा 70,000 बंदी बना लिए गए। इन गणजातीय प्रदेशों को भी पुरस के अधीन कर दिया गया। इसके बाद सिकंदर ने सौभूति तथा फेगेला नामक दो राजाओं से उपहार प्राप्त किया जिन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। यहाँ से सिकंदर व्यास नदी के तट पर आया। सिकंदर का प्रत्यावर्तन। व्यास नदी सिकंदर के उत्कर्ष का चरम बिंदु सिद्ध हुई। यहाँ एक विचित्र घटना घटित हुई। उसकी सेना में विद्रोह हो गया तथा उसके सैनिकों ने और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उनका उत्साह भंग हो चुका था तथा हिम्मत टूट चुकी थी। सिकंदर ने अपने सैनिकों के बीच एक जोशीला भाषण दिया तथा नाना प्रकार के प्रलोभनों द्वारा उन्हें प्रेरित करने का प्रयास किया, परंतु उसके सारे प्रयास निष्फल रहे और उसके सैनिकों की हिम्मत फिर न बंध सकी। सिकंदर स्वयं बड़ा लज्जित हुआ और शर्मा के मारे हुए 3 दिनों तक अपने शिविर में ही पड़ा रहा। अंतोगत्वा उसने सैनिकों की वापसी का आदेश दे दिया। सिकंदर के सैनिकों के उत्साह भंग के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी बताए जाते हैं। पहला, उन्हें स्वदेश छोड़े हुए बहुत दिन बीत चुके थे अतः उन्हें घर की याद सता रही थी। दूसरा, निरंतर युद्धों में व्यस्त रहने के कारण वे थक गए थे। गर्मी, वर्षा तथा बीमारियों के कारण उनमें से अनेक मृत्यु के शिकार हो चुके थे तथा अनेक दुर्बल एवं अपंग हो गए थे। ऐसी परिस्थिति में उनका हतोत्साहित हो जाना स्वाभाविक ही था। तीसरा, झेलम के युद्ध में यद्यपि सिकंदर की विजय हुई थी तथापि भारतीय सैनिकों ने यूनानियों के छक्के छुड़ा दिए थे। प्रत्येक स्थान पर उन्हें कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। पुनः व्यास नदी के पूर्व की ओर नंदों का शक्तिशाली साम्राज्य था। यूनानियों ने नंदों की वीरता, संपत्ति तथा समृद्धि के विषय में बहुत कुछ सुन रखा था अतः वे उसके साथ किसी प्रकार की टक्कर लेने के लिए तैयार नहीं थे। निराश सिकंदर जिस मार्ग से आया था उसी मार्ग से वापस लौटने का निश्चय किया। इसके पूर्व उसने यूनानी देवताओं की स्मृति में व्यास नदी के तट पर अपनी पूरी विजय की सीमा अंकित करने के लिए 12 विशाल वेदियां बनवाई तथा उनकी विधिवत पूजा की। उसने व्यास तथा झेलम नदी के बीच का संपूर्ण प्रदेश पुरस के अधिकार में छोड़ दिया। अम्भी को झेलम के पश्चिमी तथा अभिसार को अरसेम राज्य के साथ कश्मीर के भूभाग में उसने शासन करने का अधिकार दिया। सिकंदर ने चिनाव नदी पार की तथा झेलम तट पर आया। यहाँ उसे मालव तथा शुद्रक गणों के संगठित प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इस संघ के पास एक विशाल सेना थी। उन्होंने डटकर सिकंदर का मुकाबला किया और सिकंदर को बुरी तरह से घायल कर दिया। परंतु मालव लोग परास्त हुए, उनके राज्य के सभी नर नारी तथा बच्चे मौत के घाट उतार दिए गए। मालवों के पतन के बाद क्षुद्रकों ने भी हथियार डाल दिए और उनका संघ भंग कर दिया गया। यहाँ सिकंदर का प्रतिरोध कुछ अन्य गणराज्यों ने भी किया। व्यास तथा चिनाव नदियों के संगम के आसपास शिवी तथा अगलस जातियाँ निवास करती थीं। शिवी लोगों ने बिना किसी युद्ध के ही आत्मसमर्पण कर दिया, परंतु अगलस जाति ने एक विशाल सेना के साथ उसका सामना किया। उन्होंने अपनी स्त्रियों तथा बच्चों को आग में झोंक दिया तथा स्वयं लड़ते लड़ते मारे गए। दक्षिणी पश्चिमी पंजाब में अम्बस्ट, छत्र तथा वसाती नामक छोटे छोटे गणराज्य थे, उन्होंने भी सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। अपनी विजय के अंतिम दौर में सिकंदर ने पंजाब की नदियों के संगम के नीचे सिंधु नदी के निचले भागों को जीता। यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक थी, राजतंत्रात्मक थी। सर्वप्रथम सोगडाई के राजा ने आत्मसमर्पण किया, इसके बाद उसने मुशी राज्य पर आक्रमण किया। यहाँ के राजा ने भी साधारण प्रतिरोध के साथ उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इसी समय मुशिक राज्य के पड़ोसी एक पहाड़ी प्रदेश के शासक संबोस ने भी सिकंदर को अपना राजा बना लिया। परंतु निचली सिंधु घाटी के ब्राह्मणों का शक्तिशाली राज्य था। ब्राह्मणों ने सिकंदर का सबसे प्रबल स्वीकार कर ली थी। उसकी निंदा करते हुए उन्हें देशद्रोही करार दिया। फलस्वरूप मुशिक नरेश, मुशिक नोस तथा उसके पड़ोसी राज ऑक्सिनोस ने यूनानी दास्ता का जुआ अपने कंधों से उतार फेंका। परंतु सभी विद्रोही परास्त किए गए तथा इनमें से अनेक की हत्या कर दी गई। इसके बाद सिकंदर पाटल पहुंचा, जहां सिंधु नदी दो धाराओं में विभक्त होती है। डियोडोरस के अनुसार स्पार्टा के ही समान यहां दो राजाओं का शासन था तथा कुल वृद्धों की एक सभा द्वारा उसका संचालन होता था। यूनानियों के आगमन का समाचार सुनते ही यहाँ के नागरिकों ने नगर खाली कर दिया तथा सिकंदर ने उस पर पूर्ण अधिकार कर लिया। यहाँ उसने एक नई क्षत्रपी बनाई, जिसका शासक पिथोन को नियुक्त किया। यह सिकंदर की अंतिम विजय थी। 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से यूनान को प्रस्थान किया। जेड्रोसिया के रेगिस्तानी भागों से होता हुआ वह बेबीलोन पहुंचा। इसके दो वर्ष पश्चात 323 ईसा पूर्व के लगभग इसी स्थान में उसकी जीवन लीला समाप्त हुई। आक्रमण का प्रभाव। भारतवर्ष पर सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव के विषय में विद्वानों में गहरा मतभेद रहा है। सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखक इस आक्रमण को बहुत बड़ी घटना मानते हैं। प्लूटार्क लिखता है कि यदि सिकंदर का आक्रमण न होता तो बड़े बड़े नगर नहीं बसते। जूलियन के अनुसार सिकंदर ने ही भारतीयों को सभ्यता का पाठ पढ़ाया। उसके आक्रमण का उद्देश्य ही सभ्यता का प्रचार प्रसार था। इसके विपरीत अनेक विद्वानों ने इस आक्रमण को नितांत महत्वहीन घोषित किया, जिसका भारत के तत्कालीन जनजीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनके अनुसार सिकंदर आंधी की तरह आया और चला गया। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव बताते हुए लिखते हैं, भारत अपरिवर्तित रहा। युद्ध के घाव शीघ्र भर गए जब धीर बैलों तथा उन्हीं के समान धीर किसानों ने अपना परिश्रम प्रारंभ किया तो ध्वस्त खेत एक बार फिर लहलहा उठे। वे स्थान जहां लाखों युद्ध में मारे गए थे फिर उमड़ते हुए जनसमुदाय से भर गए। भारत का यूनानीकरण नहीं हुआ, वह अपना शानदार पृथकता का जीवन व्यतीत करता रहा और मेसिडोनियन झंझावत के प्रवाह को शीघ्र भूल गया। कोई भारतीय लेखक हिंदू, बौद्ध अथवा जैन सिकंदर के आक्रमण और उसकी कृतियों का लिस्ट मात्र भी संकेत नहीं करता। यद्यपि इतिहासकार यह कथन सत्य है कि भारत का यूनानीकरण नहीं हुआ, तथापि इस आधार पर ऐसा नहीं माना जा सकता कि सिकंदर के आक्रमण का भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से इसका भारत पर कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा था। सिकंदर के आक्रमण के पूर्व पश्चिमोत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। सिकंदर ने उन्हें विजित कर इन भागों में राजनीतिक एकता की स्थापना की। उसने इस संपूर्ण प्रदेश को चार प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त किया। पहला, प्रथम प्रांत सिंधु के उत्तरी तथा पश्चिमी भागों में बनाया गया। पहले इसका क्षत्रप निकानोर था, किंतु इसकी हत्या के बाद सिकंदर ने फिलिप को इस प्रांत का क्षत्रप बना दिया। दूसरा, द्वितीय प्रांत में सिंधु तथा झेलम के बीच का भूभाग सम्मिलित किया गया और इसे तक्षशिला के शासक आम्बी के अधीन कर दिया गया। तीसरा, तृतीय प्रांत में झेलम नदी के पूर्वी भाग सम्मिलित थे तथा इसका विस्तार व्यास नदी तक था। यह सबसे बड़ा प्रांत था और इसे पोरस के अधीन रखा गया। एरियन के अनुसार इसमें 2000 नगर थे। चौथा चतुर्थ प्रांत सिंधु नदी के निचले भाग में स्थापित किया गया। यहाँ का क्षत्रप पिथोन को बनाया गया। अपने इस कार्य द्वारा सिकंदर ने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय एकता को प्रोत्साहन दिया। कालांतर में चंद्रगुप्त मौर्य ने बड़ी आसानी से इन प्रदेशों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार यदि पूर्वी भारत में उग्रसेन महापद्मनंद मगध के सिंहासन पर चंद्रगुप्त मौर्य का अग्रज रहा, तो पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर स्वयं उस सम्राट का अग्रदूत था। सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप भारत तथा पश्चिमी देशों के बीच व्यापारिक संबंध और दृढ़ हुए। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में अनेक यूनानी उपनिवेश स्थापित हो गए, जैसे निकाया, बौकेफला सिकंदरिया, सोगडीनिया सिकंदरिया आदि। इन उपनिवेशों के माध्यम से भारत तथा यूनान एक दूसरे के घनिष्ठ संपर्क में आए तथा दोनों के बीच आवागमन के लिए समुद्री तथा स्थलीय मार्ग खुल गए। इससे लोगों का भौगोलिक ज्ञान और अधिक विस्तृत हो गया। अनेक भारतीय व्यापारी यूनान गए तथा यूनानी व्यापारी भारत आए। इस व्यापारिक आदान प्रदान से व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। व्यापारिक संपर्क के वृद्धि के फलस्वरूप भारत में यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर उलुग शैली के सिक्के ढाले गए। इस प्रकार भारतीय मुद्रा निर्माण कला का विकास हुआ। पश्चिमी एशिया तथा भारत के बीच होने वाले व्यापारिक संपर्क ने नगरीकरण की प्रक्रिया को तीव्रतर कर दिया। सांस्कृतिक दृष्टि से भी इस आक्रमण ने अनेक महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न किए। यूनानी शासन पद्धति से भारतीय शासन पद्धति प्रभावित हुई। इस समय से साम्राज्यिक व्यवस्था हिंदू राजतंत्र का अस्थायी तत्व बन गई। यह यूनान का ही प्रभाव था। कला एवं ज्योतिष के क्षेत्र में भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा। निहार रंजन राय के अनुसार मौर्य स्तंभों के शीर्षकों को मंडित करने वाली पशु आकृतियों पर यूनानी कला का ही प्रभाव था। कालांतर में पश्चिमोत्तर प्रदेशों की गांधार कला शैली यूनानी कला के प्रभाव से ही विकसित हुई थी। अनेक यूनानी भारतीय दार्शनिकों के संपर्क में आए तथा यहाँ के दर्शन से प्रभावित हुए। यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस पर भारतीय दर्शन का प्रभाव स्पष्ट है। सिकंदर के अभियान से यूरोप में भारत के विषय में जानकारी अधिक हुई। सिकंदर के साथ कई लेखक तथा इतिहासकार भारत आए। उन्होंने तत्कालीन भारत की राजनीतिक दशा के विषय में लिखा। उनके ग्रंथ कालांतर में इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक बने। रोमिला थापर के अनुसार सिकंदर के आक्रमण का सर्वाधिक उल्लेखनीय परिणाम न राजनीतिक था न सैनिक। उसका महत्व इस बात में निहित है कि वह अपने साथ कुछ ऐसे यूनानियों को लाया था जिन्होंने भारत के विषय में अपने विचारों को लिपिबद्ध किया और वे इस काल पर प्रकाश डालने की दृष्टि से मूल्यवान है। कुछ विद्वानों का विचार है कि सिकंदर तथा उसके उत्तराधिकारियों ने भारत के अतिरिक्त हखामनी साम्राज्य के सभी क्षेत्रों का यूनानीकरण कर दिया था तथा यहाँ से पारसिक कलाकारों और अधिकारियों को भारत की ओर खदेड़ दिया। वे भारत में बस गए तथा मौर्य साम्राज्य एवं शासन के विविध पक्षों को उन्होंने प्रभावित किया। इस प्रकार पारस्परिक बौद्धिक आदान प्रदान से दोनों देशों के ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। परंतु इन प्रभावों के बावजूद भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मूल पूर्णतया अप्रभावित रहा। भारतीय संस्कृति के ऊपर यूनानी प्रभाव के विषय में अंग्रेजी कवि मैथ्यू अर्नाल्ड की अग्रलिखित पंक्तियां वस्तुतः उल्लेखनीय है। पूर्व झंझा के सामने धीर गंभीर घृणा के साथ नतमस्तक हुआ। सेना के गर्जन के निकल जाने के बाद वह भारत पुनः विचार सागर में निम्न हो गया।